اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون، صدق اللہ العلی العظیم. مومنین اور مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، اختیارات اور تصرفات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز دو دن قبل ہوا، آج اس کی تیسری کڑی ہے، اور ہم نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں ائمہ طاہرین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اختیارات اور ان کے تصرفات اور ان کی ولایت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی. آج اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ جناب سلیمان، پروردگار عالم نے نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا پر اس طرح سے حاکمیت اور حکومت عطا کی تھی کہ جناب سلیمان کا اختیار جنات پر بھی تھا، انسانوں پر بھی تھا، پرندوں پر بھی تھا، حشرات الارض پر بھی تھا، جمادات پر بھی تھا، نباتات پر بھی تھا، ملائکہ پر بھی تھا. یہ سب کے سب حضرت نبی اللہ جناب سلیمان کے تابع تھے، یعنی ان کی اطاعت کے اندر، ان کی اتباع میں تھے. اب وہ والا واقعہ آج تو نہیں کہ جو جناب سلیمان تشریف لا رہے ہیں اور وادی نمل کے قریب جب نبی اللہ حضرت سلیمان پہنچے تو وہاں پر چونٹیوں نے کیا گفتگو کی، اور جناب سلیمان کے آنے کے وقت چونٹیوں کی سردار چونٹی نے باقیوں کو کیا کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ کر کہیں تمہیں کچلتا ہوا، رونتا ہوا نہ آگے گزر جائے. آج اس سلسلے میں، اس وادی میں ہم نہیں جا رہے. البتہ جناب سلیمان کے اختیار کے اعتبار سے کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. دو طرح کی باتیں، ایک تو وہ بات کہ جناب سلیمان کے لیے جو قرآن کریم کی آیت آئی ہے اور سورہ نمل کی آیت ہے، غالباً 17 نمبر کی آیت، وحشرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحشرا لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر وہم یوزعون، اور پروردگار عالم نے محشور کیا جناب سلیمان کے لشکر کو، تیار کیا، مہیا کیا، انہیں عطا کیا، من الجن، جنات میں سے لشکر، ول ان سے، انسانوں میں سے لشکر، و تیرے، اور پرندوں میں سے لشکر. لہذا یہ تین کیٹیگریز بتائی ہیں جناب سلیمان کے لشکریوں کی، ایک کیٹیگری پرندوں کی، ایک کیٹیگری انسانوں کی، ایک کیٹیگری لشکر کی حضرت سلیمان کی، کہ جن کا تعلق انسانوں سے بھی نہیں، جنات پرندوں سے بھی نہیں، جنات سے، جنات، انسان، پرندے، یہ تینوں ہی طرح کے لشکر جناب سلیمان کے پاس موجود ہیں. اچھا، وَهُمْ يُوزَعُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں بہت مختصر اور آسان کر کے اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یوں بنے گا کہ حضرت سلیمان کا یہ لشکر اتنا لمبا اور اتنا پھیلا ہوا، اتنا وسیع و عریض تھا، اتنا بڑا تھا یہ لشکر کہ اگلا حصہ روک لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پچھلا حصہ آ کر آہستہ 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 جمع ہو جاتا تھا، اور پھر یہ پورا کا پورا لشکر ایک جگہ پر آ کر رکتا تھا، کسی ایک جگہ پر، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب یہ کمیوٹ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ٹرانسفر ہوا کرتا تھا لشکر حضرت سلیمان کا، تو اس کے لیے ہوتا یہ تھا کہ آ کے جمع ہوتے تھے لشکر کے ٹکڑے، لشکر کے پیسز تھوڑے تھوڑے کر کے آ کے جمع ہوتے تھے، ہم یوزعون، ان کی توزیع ہوتی تھی، توزیع ہوتی تھی یعنی ان کو بانٹا جاتا تھا، کیسے آ کے تھوڑے تھوڑے جمع ہو رہے ہیں، انسانوں کا لشکر آ کے جمع ہو رہا ہے، ایک اور ٹکڑا آ کر انسانوں کے لشکر میں جمع ہو گیا، ایک اور ٹکڑا آ کر جمع ہو گیا، پھر جنات کا لشکر ایک گروہ آ کر جڑا، پھر دوسرا گروپ آ کر جڑا، پھر تیسرا گروپ آ کر جڑا، اسی طرح سے جب تہران کی بات آ رہی ہے، اڑنے والے پرندوں کی بات آ رہی ہے، تو پرندوں کی بھی ایسے لشکر، سب لشکر، تو یہ سارے آ کے جمع ہوتے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے، اور پورا لشکر تشکیل پاتا تھا، اگلا حصہ رک جاتا تھا، پیچھے آ کے جمع ہونے والے تھوڑے 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 آ کر جڑ کر پھر جمع ہو جاتے تھے، یہ تھا جناب سلیمان کا لشکر۔ تو یہ جناب سلیمان کا لشکر وہ لشکر ہے کہ جس کے اندر جنات ہیں، انسان ہیں اور پرندے ہیں، اور اس طرح سے آ کر جڑتے ہیں کہ باقاعدہ سے وقت لگ رہا ہے پورا کا پورا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ کر جمع ہونے میں، اسمبل ہونے میں، ان کی اسمبلی کا بیان کیا جا رہا ہے ہم یوزعون کے اندر۔ اب یہ ہے جناب سلیمان کا اختیار، کیا اختیار ہے؟ یہ ان کا لشکر ہے، ان تین کیٹیگریز کے اوپر محیط پھیلا ہوا، لیکن اتنا بڑا لشکر ہے کہ اسے آنے میں ٹائم لگ رہا ہے، جمع ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، اسمبل ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، ان کی اسمبلی کے اندر وقت لگ رہا ہے۔ اور آ جائیے امام معصوم علیہ السلام کا لشکر، اس کا کیا عالم ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا کیا انداز ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے۔ متوکل کا دور ہے، شہر کا نام ہے سامرا، اور امام علی النقی علیہ افضل التحیت والثناء تشریف لائیں، اور متوکل اپنے لشکر کا، لاؤ لشکر کا روب مولا پر ڈالنے کے لیے یہ انداز اختیار کر رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور اپنے لشکر کو جمع کیا، اور یہ کہا اپنی آرمی کو، متوکل نے یہ کہا کہ دیکھو تھوڑا سا ایک کام یہ کروایا متوکل نے اپنی آرمی سے۔ اب اس کی آرمی کے اندر کون سی فوجیں تھیں، اب یہ پوری ایک تاریخ ہے جو شہر سامرہ کی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا جائے گا کبھی کچھ، تو اس کے اندر بیان ہوگا۔ متوکل نے اپنے لشکر کے سپاہیوں سے کہا کہ تم ایک کام کرو، ایک ایک مٹھی ریت اٹھاؤ اور وہاں جا کر رکھو، جمع کرتے جاؤ۔ اتنی بڑی آرمی ہے کہ اس کی سپاہیوں نے ایک ایک مٹھی بھی اگر ریت ایک جگہ پر لے جا کر جمع کی اور ڈمپ کرنا شروع کی تو وہ ایک ٹیلا نما بن گیا تھا، اور اس ٹیلے کے اوپر کے جو کافی اونچائی پر بن گیا تھا، اونچا کافی بلند بن گیا تھا، وہاں جا کر متوکل نے اپنا تخت لگایا اور سجایا، وہاں پہ جا کر بیٹھا، کہا جتنا اناج ہمارے حکومت کے اندر، ہمارے خزانوں کے اندر ہے، سارا نکال کر لے آؤ، جتنے جواہرات، سونا، چاندی، ہیرا ہے، سب نکال کر لے آؤ، جتنا اسلحہ ہے سب جا کر لے آؤ، جمع کریں گے، جتنے لوگ ہیں سب لے آؤ، جتنے مزدور ہیں سب لے آؤ، جتنی گاڑیاں ہیں سب لے آؤ، جتنی سواریاں ہیں سب لے آؤ، جو کچھ ہمارے لشکر کے اندر ہے، جو کچھ ہماری سلطنت کے اندر ہے، وہ سب جا کر لے آؤ اور یہاں پر رکھ دو، جمع کر دو۔ اور اس کے بعد کہا جاؤ اب جا کر علی ابن محمد کو بلا کر لے کر آؤ، یعنی کہ ہمارے اور آپ کے مولا و آقا حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب مولا تشریف لے کر آئے، یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا مرعوب ہو جائیں گے، جیسے ہی مولا آئے ہیں تو مولا نے آ کر دیکھا، ایک نظر دوڑائی، متوکل نے کہا یہ میرا لشکر ہے دیکھ لیجیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مولا نعوذ باللہ من ذالک مرعوب ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، ایک دہشت مولا کے دل پر پڑ جائے گی، حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا اور مولا مسکرانے لگے۔ وہ سارا کا سارا ماجرا دیکھ کر امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سرکار मुस्कुराने लगे। कहा, तेरा लश्कर तो मैंने देख लिया, क्या तू मेरा लश्कर देखना चाहता है? सुलेमान का लश्कर जहन में रखिएगा। तो मुतवक्किल ने कहा, मुतवक्किल से कहा मौला इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने कि तू अपना लश्कर दिखा चुका, अब क्या तू हमारा लश्कर देखना चाहता है? मोहम्मद की आल से ताल्लुक रखने वाले इस अली नकी बेटे का लश्कर देखना चाहता है? हाँ बताइए। वो समझ रहा था कि नाउज़ुबिल्लाह क्या होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फकत और फकत आसमान की तरफ अंगुश्ते मुबारक से इशारा किया। मौला ने अपने अंगुश्ते मुबारक को ऐसे आसमान पर दौड़ाया है, ऐसे इशारा किया है, और जैसे ही मौला ने अपने अंगुश्ते मुबारक को फिराया है तो क्या देखा? मुतवक्किल से कहा, आप देख। जब आप मुतवक्किल ने आसमान और जमीन के दरमियान देखा तो क्या देखा? मलाइका, जिन्नात, उड़ने वाले, और ये सब के सब जमीन से लेकर आसमान के दरमियान फौज ही फौज है, चारों तरफ फौज ही फौज है, और इस सारी की सारी फौज ने जमीन से लेकर आसमान के दरमियान जो भरी हुई है उसने घेर लिया है मुतवक्किल को और उसके सिपाहियों को, और खुद इमाम अलैहिस्सलाम भी जहां पर मौजूद है, और इन सबके हाथों में आग का गुर्ज था, और ये सब कह रहे थे लब्बैका या अली इब्न मोहम्मद, लब्बैका या हुज्जत अल्लाह, आप की खिदमत में हम हाजिर हैं, ए मौला हम हाजिर हैं। और क्या है, इमाम अलैहि सलाम के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर मौला इमाम अली नकी अलैहि सलाम का हुक्म हो और वहां पर आपके गुर्ज लेकर यह हमला कर दें। जब ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा है, मुजज़ाए इमाम अली नकी अलैहि सलाम का मंजर, मुतवक्किल ने, तो मुतवक्किल एक मरतबा बेहोश हो गया, उसका तख्त गिर पड़ा और वो टीले से आकर जमीन पर गिर गया मुतवक्किल। तो वो लाओ लश्करे जनाबे सुलेमान था कि जो इतना फैला हुआ था कि अगले हिस्से को रोकते थे तो पिछला हिस्सा आकर मिलता था, मगर था तो जमीन पर। और ये लश्कर है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का, जमीन और आसमान के दरमियान जितना जितनी फजा है, जितनी स्पेस है, उस पूरी की पूरी स्पेस के अंदर जिसका लश्कर फैला हुआ है चारों तरफ, उस हस्ती का नाम अली जिब्ने मोहम्मद नकी अलैहि अफजल सलात व सलाम है। यह मौला का इख्तियार है, यह मौला की विलायत है, यह मौला का मकाम और उनकी मंजिलत है कि आपका लश्कर जमीन और आसमान के दरमियान फैला हुआ है। और यही वजह है, चूंकि अस्कर मुअस्कर है, अस्कर रखते हैं आप, एक लश्कर रखते हैं, जिसकी वजह से आपको अस्करी कहा गया, और जिस इलाके में आप रहे, जिस शहर में आप रहे, उसको मुअस्कर कहते हैं, मुअस्कर में रहने वाला अस्करी। खैर, ये दसवें इमाम अलैहिस्सलाम का मुजज़ा। अब आ जाइए हजरत सुलेमान ही की तरफ दोबारा से, कि नबीउल्लाह हजरत सुलेमान, जिन्नात पर आपकी हुकूमत, इंसानों पर आपकी हुकूमत, परिंदों पर आपकी हुकूमत, मलाइका पर आपकी हुकूमत, जमादा तबक, दुनिया पूरी की पूरी दुनिया पर जिनकी हुकूमत है उसे हजरत सुलेमान कहते हैं। एक खातमे सुलेमान का जिक्र भी आता है, ये फिर आगे किसी और दिन के लिए, कि ये पूरी की पूरी हुकूमत, हजरत सुलेमान की ये पूरी हुकूमत जो पोशीदा है, पिन्हा है, वो एक अंगूठी के अंदर है। अगर अंगूठी निकाल दे हजरत सुलेमान तो वो इख्तदार खत्म, बस वो सारा का सारा इख्तदार जो है वो टिका हुआ है उस अंगूठी के ऊपर। अब ये फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, लेकिन अभी जो मैं इस वक्त बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं वो बात है कि जनाब सुलेमान की हुकूमत पूरी दुनिया पर है, और इसी सूरह नमल की एक आयत कहती है मालियाल्ला अरल हुदहुदा अमकाना मिनल गाइबीन, कि क्या हो गया भाई वो हुदहुद नहीं नजर आ रहा, अमकाना मिनल गाइबीन किधर गायब हो गया, गायब गाइबीन में से हो गया, क्यों नहीं नजर आ रहा, कहां चला गया है हुदहुद? जनाब सुलेमान परेशान हो गए। अच्छा, हुदहुद के चले जाने से परेशान क्यों हो गए? हुदहुद है कौन? हुदहुद एक ऐसा परिंदा कि जो नबीउल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ साथ है, और उसका काम यह है, उसकी जिम्मेदारी यह है, वो हेल्प यह करता है जनाब सुलेमान की, कि जहां पर हजरत सुलेमान जाने वाले हैं, जिस इलाके का विजिट करने वाले हैं, या जहां पर पहुंचने वाले हैं, وہاں پر یہ جناب ہدہد پرندہ پہلے سے پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر اس جگہ کا معائنہ کرتا ہے. کیا معائنہ کرتا ہے, کیا انسپیکشن کرتا ہے ہدہد؟ ہدہد کے انسپیکشن کرنے کی چیز اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھ کر آتا ہے کہ وہاں پانی ہے یا زمین ہے. اگر زمین ہے تو ہم وہاں جائیں, اور اگر پانی ہے تو ہم اس راستے کو اختیار نہ کریں, کسی اور روٹ کو اختیار کر کے آگے بڑھے, تو پانی سے نہ گزرنا پڑے. اب جناب ہدہد غائب ہو گئے, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ادھورا محسوس کر رہے کہ ہدہد آئے گا ہمیں بتائے گا پھر ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے نا. جناب سلیمان, انسانوں پر حکومت, جنات پر حکومت, پرندوں پر حکومت اور دنیا پر حکومت ہے, مگر ایک چیز ہے جو جناب سلیمان کو بھی نہیں پتا کہ زمین پر پانی کہاں کہاں ہے. یعنی جناب سلیمان کو کیا نہیں پتا, جناب سلیمان کے علم میں ایک ایسی چیز نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ حضرت سلیمان کی علم میں یہ نہیں ہے کہ زمین پر پانی کہاں کہاں ہے. گویا حضرت سلیمان کے علم میں وہ چیز نہیں ہے جو ایک پرندے کے علم میں ہے. اب پروردگار عالم کا بھی ایک نظام ہے کہ جناب سلیمان کو دنیا پر حکومت دی مگر یہ ایک چیز روک لی, یہ علم جناب سلیمان سے روکا. اب بہرحال جس کا جو منصب, جس کا جو اقتدار, جس کی جو منزلت, اس کو اتنی عطا ہے پروردگار ہے. نبی خدا سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا پر حکومت ہے مگر اس ایک چیز کا علم نہیں. یعنی کہ حضرت سلیمان نہیں دیکھ پا رہے اتنا دور کہ جتنا دور ایک ہدہد پرندہ جا کر دیکھ کے آ جاتا ہے بتاتا ہے. یہ ہے جناب سلیمان کا اختیار کہ ایک ہدہد پرندہ آ کر بتائے گا کہ آگے پانی ہے یا نہیں تو حضرت سلیمان چلیں گے. اور یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کائنات کا رسول, اللہ کا حبیب, ہمارے اور آپ کا رحمت نبی, سرکار دو عالم, خاتم الانبیاء, سید الانبیاء, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں حضور اکرم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہم الفدا, نماز پڑھا رہے ہیں حضور سرور دو عالم اور شمع رسالت کے پروانے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اور رسول رکوع میں جائیں اس سے پہلے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے افراد رکوع میں چلے جا رہے ہیں. فاستبقوا الی الخیرات قرآن کریم کے اندر ہے کہ نیکی کی طرف جلدی کرو, تو وہ شاید اسی قول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نیک کام میں جلدی کرو تو اسی لیے نیک کام نماز میں جلدی کر رہے ہیں. یہ مطلب تھوڑی ہے نیکی میں جلدی کرو. یہاں پر یہ تقاضا ہے کہ رسول کے رکوع سے پہلے رکوع نہ کیا جائے, رسول کے سجدے سے پہلے سجدہ نہ کیا جائے, رسول کی قیام سے پہلے قیام نہ کیا جائے, رسول کی نماز کے اختتام سے پہلے اپنی نماز ختم نہ کی جائے. تو رسول کی اتباع اقتداء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پیچھے 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 چلنا ہے, رسول کے آگے نہیں بڑھ سکتے. مگر اب جو پیچھے افراد تھے وہ تو رکو پہلے کر رہے ہیں اور رسالت وہاں آگے ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, رخ قبلے کی طرف ہے, لوگ پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید رسالت وہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور رسالت وہاں آپ نے جب نماز ختم فرمائیے, تمام فرمائیے, تو اپنے پیارے اصحاب کی طرف دیکھ کر رسالت وہاں آپ نے ارشاد فرمایا, رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تسبقونی بالرکوع یا پھر رکوع, لا تسبقونی پھر رکوع, رکوع میں مجھ پر سبقت نہ کرنا, اس لیے کہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ رکوع کا تعلق ظاہر سے ہے, خشوع کا تعلق باطن سے ہے. رسول ارشاد فرما رہے ہیں یاد رکھو رکوع میں مجھ پر سبقت نہ لینا, اس لیے کہ میں تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں, تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں, تمہارے ظاہر سے بھی محمد مصطفیٰ واقف ہے, تمہارے باطن سے بھی میں واقف ہوں, لہذا مجھ پر سبقت نہ کرنا. اور اب اس کے کیا پیغامات ہیں اس واقعے کے, اب وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, میں اس کو بات بہت طولانی نہیں کرنا چاہتا, اس کو بہت ڈریگ نہیں کرنا چاہتا, بس آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہیں جناب سلیمان کے جن کی نگاہوں کی حد یہ ہے کہ خشکی اور تری پر نگاہ نہیں ہے جناب سلیمان کی، اس بات کے باوجود کہ آپ دنیا پر حکومت رکھتے ہیں اور یہ ہے کائنات کا سرور، کائنات کی رحمت نبی، کہ جو ویسے ہی دیکھتے ہیں پیچھے کے جیسے آگے دیکھتے ہیں. اور یہ تو رسالت ماپ کی بات ہو گئی کہ دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے، چہرہ آگے ہے مگر پیچھے کیا ہو رہا ہے دیکھ لیا، یہ ان کا اختیار. لیکن آئیے کائنات کے اس رحمت نبی کے وسیع کی کیا شان ہے. اب وسیع بھی وہی ہوگا کہ جو بالکل اسی طرح سے دیکھ لے گی جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دیکھ رہے ہیں. رسالت ماب تشریف لے گئے معراج پر، معراج کے سفر سے واپسی آئے، اور رسالت ماب جب تشریف لائے ہیں خانہ بیت الشرف میں تو مولا کائنات علیہ السلام نے استقبال کیا، کہا میرا سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، آپ کا سفر معراج کیسا رہا؟ آپ بیان فرمائیں گے یا آپ کا یہ غلام علی جی ابن ابی طالب آپ کو معراج پر ہونے والے واقعات کی تفصیل سے آگاہ فرمائیں؟ یہ نگاہ ہے علی ابن ابی طالب کی کہ جو عرش تک جا رہی ہے، ارے اس علی کی کیا بات کرتے ہو کہ جو علی مصحف کا محتاج نہیں، چاہے تو لوح محفوظ پر دیکھ دیکھ کر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرے. اور وہ علی، کس علی کے ولایت اور کس علی کی اختیارات اور تصرفات کی بات کر رہے ہو؟ جنگ میں جس علی کی تلوار ہر کس و ناکس پر نہیں چلتی، جب تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس پر تلوار چلانے والے ہیں اس کی 70 نسلوں تک نگاہ نہ دوڑا لے، ایک مومن بھی ہوا تلوار علی نہ چلے. اور اگر ایک مومن بھی ہوا، ایک مومن نہ ہوا، یعنی 70 پشتوں تک، 70 نسلوں تک اگر ایک مومن بھی نہ ہوا، پھر اس پر علی کی تلوار چلتی ہے جس کی نگاہیں اس دہر میں رہتے ہوئے 70 نسلوں تک دیکھ لے، اسے علی جی ابن ابی طالب کہتے ہیں. وہ آنکھیں وہ ہیں کہ جسے عین اللہ کہا گیا. لہذا یہ ہے اختیارات جناب سلیمان کے، اور یہ ہے اختیارات محمد مصطفیٰ اور ان کے وسیع کے. اب آ جائیے بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام کی نگاہیں، آپ کی تلوار کی کاٹ اور آپ کی تلوار کا چلنا صرف زندگی کے اندر محصور ہے اور محدود ہے، کنفائنڈ ہے کیا صرف اور صرف مولا کائنات علیہ السلام کی تلوار کا چلنا نسلوں کو دیکھ کر صرف زندگی میں کنفائنڈ ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں، بلکہ زندگی کے بعد بھی علی اس ہستی کا نام تھوڑی ہے کہ جس کی ولایت فقط زندگی کے اندر ہے. زندگی اور موت کی قید سے آزاد ہستی کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور کس طرح سے زندگی کی قید سے باہر نکل کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک دشمن پر تلوار چلائی، اور صرف علی کا دشمن نہیں ہے، علی کی تلوار اس پر چلتی ہے کہ جو صرف علی کا دشمن نہیں، کیونکہ علی اپنی ذاتی دشمنی رکھنے والے پر تلوار نہیں چلاتے، علی اس پر تلوار چلاتے کہ جس نے خدا سے دشمنی کی، رسول خدا سے دشمنی کی. جو خدا اور رسول کا دشمن وہ علی کا دشمن. اب ایک واقعہ نجف اشرف کا، مرہ بن قیس نام کا ایک بادشاہ، اور یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے آباؤ اجداد کے شجاعت کے قصے اپنے دربار میں سنانے کا ایک ارینجمنٹ کیا. اور جب یہ ارینجمنٹ ہوا تو لوگ آ گئے، جس کی کوئی فضیلت ہو تو بیان بھی ہو، کتابیں بھری ہوئی ہیں فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. اس بات کے باوجود بھی کہ دوستوں نے مولا کائنات کی فضیلتوں کو چھپایا خوف کی وجہ سے، اور دشمنوں نے چھپایا بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، تو وہ علی کے جس کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا خوف کی وجہ سے، دشمنوں نے بھی چھپایا نفرت کی وجہ سے، وہ علی کے جن کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے، دشمنوں نے بھی چھپائے، تب بھی آج فضائل سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. अगर छुपाने वालों ने मौला की फजीलतों को छुपाया ना होता, आशकारा रखा होता, बयान करते रहे होते, तो सोचिए आज कायनात में कितनी गूंज और ज्यादा होती मेरे मौला के फजाइल की। तो फिर क्या आलम होता अगर छुपाने वालों ने ना छुपाए होते फजाइल। लेकिन जिसकी फजीलत हो तो फिर बयान भी हो, और हक बोलता है। हक को एहतियाज नहीं है इस बारे में कि साबित किया जाए, हक हक होता है। हक रोशनी की तरह से है, जहां अंधेरे के अंदर रोशनी रख देंगे, हक रख देंगे, वो खुद बताएगा कि मैं हक हूं। खुद बोलता है, हक खुद बोलता है कि मैं हक हूं। मगर जहां पर कोई फजीलत ना हो तो क्या बताएं फिर? अगर किसी की फजीलत नहीं है, मुर्रा बिन कैस के आबा अजदाद की फजीलत नहीं है, तो बताएंगे क्या? बनाएंगे ही ना, बनाई। और जिसने जितनी अच्छी फजीलत बनाई उसको उतना बड़ा इनाम मिला। और ऐसा हुआ कि लोग बता रहे, अब बनाए जा रहे, बनाए जा रहे, बनाए जा रहे फजीलत, बताए जा रहे, बताए जा रहे, बताए जा रहे, बना बना के बता रहे। यहां तक कि एक शख्स खड़ा हुआ और वो खड़ा होकर कहता है, देखो आपने तो बड़े बताए सुनाए फजाइल मुर्रा बिन कैश के वालिदैन के और आबा अजदाद के, एक शजा पहलवान का जिक्र मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि पहले मुझे जान की अमान दोगे फिर मैं बताऊंगा। कहा तुम्हें जान की अमान दी? कहा मैं जान की अमान इसलिए मांग रहा था कि वो जिस शजा का मैं जिक्र करना चाहता हूं ये तुम्हारे आबा अजदाद से नहीं, बल्कि इसने तुम्हारे आबा अजदाद में से बहुत सो को तहे तेख किया है, इन पर तलवारें चलाई है, कत्ल किया है इन्हें। ओहो, तो बड़ा मसला हो गया। मुर्रा बिन कैस एक मरतबा चौकन्ना हो गया, कहा कि मुझे बताओ ये कौन है, क्या नाम है, कहां रहता है, हम जाएंगे इंतकाम लेंगे। कहा इनका नाम है अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफजलुस्सलात वस्सलाम। अब वो तो अब इस वक्त दुनिया के अंदर जाहिरी तौर पर तो नहीं है, मुंतकिल हो गए बारगाह परवरदिगार में, और अब उनकी कब्र है, उनको दफनाया हुआ है, और नजफ अशरफ में उनकी कब्र है। कहा लश्कर तश्कील दिया जाए, नजफ जाएंगे। और लश्कर तश्कील पाया, 3,000 का लश्कर लेकर चले मुर्रा बिन कैस और उनकी फौज वाले, ये सारे के सारे पहुंचे दरवाजे नजफ के बाहर। किला था उस वक्त, दीवार थी, और उस दीवार को तोड़ने में 3 दिन लगे। जब वो दीवार टूटी अंदर दाखिल हुए, जब अंदर दाखिल हुए दोनों फौजें आपस में लड़ पड़ी। मुर्रा बिन कैस दौड़कर मौला की कब्र मुतहर के पास आया। ये वो दौर है कि जो सफवी बादशाहों के दौर से पहले का दौर, इसी वजह से उस वक्त मौला की जरीह अकदस नसब नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का जो संदूक होता है वो मौला की कब्र मुतहर के निशान पर रखा हुआ था। ये आए और तलवार निकाली इन्होंने और कहने लगे, या अली आपने मेरे आबा अजदाद को कत्ल किया है, उनका वारिस उनका इंतकाम लेने आया है, उनके खून का इंतकाम लेने आ गया है। और ये कहकर तलवार चलाई, वार किया, मौला की कब्र पर जो लकड़ी का जो संदूक लगा हुआ था वो संदूक दोपारा हुआ, कट गया। जैसे ही तलवार के पड़ने से संदूक कटा है तो एक मर्तबा दो उंगलियां बरामद हुई, और जैसे ही वो दो उंगलियां बरामद हुई उसे काट कर दो टुकड़ों में बांट दिया। किसे? मुर्रा बिन कैस को काट कर दो टुकड़ों में बांट दिया। और अब वहां पर जंग रुक गई। पीछे जंग जब रुक गई, क्या हमारे सरदार को तो मार दिया, सारे आ गए, जमा हो गए। और आकर जब जमा हुए तो पता करने लगे कि किसने कत्ल किया होगा इन्हें। सारे जमा हुए, कोई बता ना पाया कि यहां पर कौन आया और किसने आकर मुर्रा बिन कैस के ऊपर तलवार चलाई, इस तरह से कत्ल कर दिया, दो टुकड़े कर दिए। एक पीर मर्द तजुर्बाकार आया, जाए बुकू आका, उसने जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद ये कहा कि मुझे एक टूल लाकर दिया जाए, एक औजार मुझे चाहिए, फैसला करने के लिए उसकी मुझे जरूरत है। क्या? तराजू, मीजान। जब मीजान लाया गया, कहा ये जो दो टुकड़े हैं, इन दो टुकड़ों को मीजान के दोनों पलड़ों पर एक एक करके रख दिया जाए। रख दिए गए। कहा मीजान को, तराजू को उठाया जाए। जब तराजू को उठाया गया तो क्या देखा? कि वजन में बराबर सा भी फर्क नहीं है, जर्रा बराबर भी वजन में फर्क नहीं है, जो दोनों कटे हुए टुकड़े हैं उनका वजन बराबर एग्जैक्टली सेम। मुस्कुराने लगा वो पीरे मर्द और कहने लगा भाई फैसला तो हो गया, मुर्रा बिन कैस को किसी और ने नहीं, साहिब कब्र अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम ने कत्ल किया है। यही तो वो थे कायनात के अंदर एक ऐसी हस्ती कि जब किसी पर तलवार चला के उसे दो टुकड़े कर दिया करते थे तो दोनों टुकड़े ऐसे कटते थे, इस अदालत और इंसाफ के साथ कटते थे कि दोनों के वजन में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं होता था। ये वो अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम है कि जिनकी विलायत जिंदगी में भी है, जिंदगी के बाद भी है। अली का इख्तियार जिंदगी और मौत की कयूदात के अंदर मुकय्यद नहीं है। लिहाजा ये मौलाए कायनात अलैहि सलाम। अब आ जाइए एक, अब जब जिंदगी मौत की बात हो गई तो इनके इख्तियार का एक पहलू और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि ये फकत और फकत अपनी बात नहीं कि मौलाए कायनात अलैहि सलाम जिंदगी और मौत की कयूदात से बाहर निकलकर किसी की मदद के लिए आ रहे हैं या किसी दुश्मन को सबक सिखा रहे हैं, उस पर तलवार चला रहे हैं या जैसा भी सिलसिला। एक ऐसी खातून है कि जो मौलाए कायनात अलैहि सलाम के पास अपनी हयात में तशरीफ लाई और सवाल क्या लेकर आई है, मौला अपनी इमामत पर कोई दलील इनायत फरमाइए। मैं अब जरा सोचिए कि वो मुमिना वो खातून के जिसका नाम रिवायत में हब्बाबाए वालबिया मिलता है, वो क्या कह रही है मौला के पास आकर। वो आकर ये कह रही है या अमीर अल मोमिनीन या अबुल हसन, अपनी इमामत का अब नहीं मालूम उस वक्त इन अलकाबात से मौला को नवाजा या नहीं, लेकिन आकर ये सवाल किया कि अपनी इमामत पर दलील इनायत फरमाए, मुझे दलील चाहिए आपकी इमामत की। इमाम है अमीर उल मोमिनीन आका मौला अबुल हसन अलैहि सलाम ने, मौला अमीरुल मोमिनीन ने इशारा फरमाया कंकर की तरफ। उयूनुल मौजिजात के अंदर यह रिवायत मौजूद, मुस्तदरक सफीनतुल बिहार के अंदर यह रिवायत मौजूद। हब्बाबाए वालबिया से कहा जाओ और वो जाकर वो जो कंकर पड़ा हुआ है जमीन पर वो उठाकर मेरे पास लाओ। हब्बाबा गई और वो कंकर उठाकर मौला अमीर अलैहि सलाम के पास लेकर आई। मौला अमीर अलैहि सलाम ने उस कंकर के ऊपर अपनी अंगुश्तरी अंगूठी पर बने हुए मोहर उस कंकर पर रखा। रखना ही था कि वो मोहर जो मौला के अंगूठी पर नक्श था वो शब्द हो गया, वो छप गया उस कंकर के ऊपर। कंकर है, कोई स्पंज नहीं है, कंकर है। बच्चे जिससे प्लास्टिसाइन से खेलते, प्लास्टिसिन जो सैंड होता है, कौन सा सैंड होता है जो बच्चों के प्लेडो जिसे कहते हैं, उससे जो बच्चे खेलते हैं, ये वो चीज नहीं है कि मैं अपनी अंगूठी रख दूं और उसके ऊपर निशान छप जाए। ये मौजिजा है जो मौलाए कायनात अलैहि सलाम अपनी इमामत पर दलील इनायत फरमा रहे हैं हब्बाबाए वालबिया को। और एक मर्तबा हब्बाबाए वालबिया ने उस दलील को लिया, खुशी खुशी मौला पर सलाम इरशाद किया, चली गई दोबारा से। अच्छा, इमाम अलैहि सलाम मौला अमीर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, मौला ने इरशाद फरमाया कि ये कंकर रख लो अपने पास और ये कंकर अब मेयार होगा हर उस शख्स के लिए कि जो अब आने वाले जमानों में इमामत का दावा करे। अब जो जो इमामत का दावा करेगा उसके पास ये कंकर ले जाना ए हब्बाबा, और जो मैंने किया है वही करने का उसको कहना। अगर उसकी अंगुश्तरी का, अगर उसकी अंगूठी का नक्श इस पर छप जाए, सब्त हो जाए, तो समझ जाना कि वही इमामे बरहक है। और जो सिर्फ दावा करे और उसकी अंगुश्तरी पर बना हुआ नक्श इस कंकर पर सब्त ना हो सके, समझ लेना कि वो हक का इमाम नहीं है। मौला हसन मुश्तबा अलैहि सलाम का दौर आया, वो हब्बाबाए वालबिया पहुंच गई इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम के पास, और इमाम ने भी वही मौजिजा जो मौला अमीर अलैहि सलाम ने फरमाया था करके दिखाया था, उसी शान से मौला हसन मुश्तबा अलैहि सलाम ने अपने अंगुश्तरी पर बने नक्श को उस कंकर पर सब्त किया। अब उस कंकर पर इमाम हसन अलैहि सलाम की अंगुश्तरी वाला नक्श मोहर सब्त है। यहां तक कि मौला हुसैन अलैहि सलाम का दौर आया, हब्बाबा इमाम हुसैन अलैहि सलाम के पास आई। यहां तक कि मौला सज्जाद अलैहि सलाम का दौर आया, हब्बाबा वालबिया इमाम सैयद साजिदीन आका ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मौला के पास आई। यहां तक कि जब मौला सज्जाद के पास आई है तो अब इस वक्त हब्बाबा ये कहती है कि मैं हुसैन अलैहि सलाम के बेटे अली इब्न हुसैन के पास आई जब उनकी खिदमत में हाजिर हुई दलील इमामत लेने के लिए, तो अब इस वक्त मेरी उम्र 113 साल की हो चुकी थी, मैं इंतहाई ज़ईफ़ा हो चुकी थी, मुझे नजर कुछ नहीं आता था ठीक से, मुझ पर ज़ईफ़ी और बुढ़ापे के आसार ऐसे तारी हो चुके थे कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने अब अपनी इमामत की दलील देने से पहले, वो मौजज़ा दिखलाने से पहले, अपनी अंगुष्ठे मुबारक, मौला ने अपनी उंगली से अंगुष्ठे मुबारक के जरिए से इशारा फरमाया। जैसे ही मौला सैयद सज्जाद ने इशारा फरमाया, हब्बाबे वालिबिया की जवानी पलट आई, पीरी बुढ़ापा दूर हो गया और फिर से जवा हो गई जनाबे हब्बाबा ए वालिबिया ए मुमिना। और मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम ने जब उनकी इस पीरी को दूर कर दिया, बुढ़ापे को दूर कर दिया, जवानी पलट आई, तो एक मर्तबा कहा कि वो कंकर मुझे दे दे। अल्लाहु अकबर, अभी आकर बयान नहीं किया कि मैं कंकर लेकर आई हूं और आपसे दलील चाहती हूं इमामत की, नहीं, इमाम ने फरमाया कि वो जो कंकर लेकर आई है वो मुझे दे दे ताकि मैं तुझे वो मौजूदा दिखला दूं, दलील दे दूं तुझे अपनी इमामत पर। और फिर जैसे ही वो कंकर दिया, इमाम ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला ने अपनी अंगुष्ठरी के जरिए से उस पर अपना मोहर नक्श फरमा दिया। चौथे इमाम के बाद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के दौर में आई, उसी तरह से मौजूदा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में आई, उसी तरह से मौजूदा। इमाम काजिम अलैहिस्सलाम के दौर में आई, उसी तरह से मौजूदा। यहां तक कि मौला अली इब्ने मूसा रिजा आका अबुल हसन शमसुल शुमूस अनीसुल नुफूस अय्युहल मदफून बे अर्ज तूस सरकारे अबुल हसन मौला रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला की आका की खिदमत में हाजिर हुई। अब जब मुगीसु शीअते वज़ुवारे फी यौमिल जज़ा मौला के पास आई, तो आका ने वो मौजज़ा दिखलाया, अब ये फिर से बूढ़ी हो चुकी है। रावी हशाम ये कहता है कि उसके बाद फिर उस मौजज़े को देखने के बाद फिर हब्बाबा वालिबिया तकरीबन 9 माह और जिंदा रही और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन जरा मौला का करम देखिए, यकीन की मंजिल, ऐनुल यकीन हक्कुल यकीन की मंजिल पर पहुंचाया हब्बाबा वालिबिया को। मतलब क्या हुआ, अगर कोई चाहे और इमाम अलैहि सलाम की बारगाह में आ जाए तो ऐन मुमकिन है कि इमाम उसे विजदान, उसके विजदान के अंदर ऐसी यकीन की कैफियत पैदा कर दें कि जिसके बाद फिर उसे किसी चीज की मोहताजी नहीं है। हिदायत उसे बराह रास्त इमाम अलैहि सलाम ने दिए। हिदायत की दो ही तरीके, इराअतु तरीक ईसाले लल मतलूब, रास्ता दिखाना, ये एक हिदायत का तरीका है कि बता देना भाई आप यहां से जाए, फिर राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े, फिर सीधा जाए, फिर राइट जाए, आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी। एक मर्तबा होता है कि आपने कहां जाना है, मैंने वहां जाना है, आओ मैं हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाता हूं, आओ मेरी गाड़ी में सवार हो जाओ मैं तुम्हें ले जाता हूं, आओ मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ मैं तुम्हें ले जाता हूं, एक ये तरीका होता। तो इमाम अलैहि सलाम के पास दोनों ही तरीके हैं, किसी को हिदायत मिलती है इराअतु तरीक वाले तरीके से कि बता दिया जाता है कि देख लो ये रास्ता, यहां से चले जाओगे तो पहुंच जाओगे, और किसी को हिदायत मिलती है हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर उसे हिदायत दी जाती है, उसे हिदायत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनायत फरमाते हैं। दुआ में इतनी तासीर है, मौला से तवस्सुल के अंदर इतनी ताकत है, अगर इंसान चाहे अपने मौला से सिद्क दिल से तवस्सुल इख्तियार करे, कहे मौला, मौला से राजो नियाज करे, अपना राबिता इमाम मासूम से मजबूत करे, किन चीजों के जरिए से, वो ज्यारतें हैं उनको पढ़कर, हर दिन की एक ज्यारत है हर इमाम से मंसूब, हम क्यों नहीं पढ़ते इन ज्यारतों को, क्या कहा जाता है उस ज्यारत के अंदर कि मैं आपका मेहमान और आप मेरे मेजबान, आपसे अच्छा कोई मेजबान नहीं, मेहमान तो अच्छा बुरा हो सकता है, मेजबान आपसे अच्छा कोई नहीं, अना ज़ईफुका अल्योम, मैं आपका इस दिन के अंदर मेहमान हूं, मुझ पर करम फरमाए, मुझ पर नजर करम करे, ज्यारतों के जरिए से, कुरान करीम पढ़कर हदिया करने के जरिए से, हर मौके पर इन्हें याद रखने के जरिए से, ये कैसे होगा कि मैं हर दम अपने मौला को याद रखूं और जब मेरा वक्त आए तो मौला मुझे याद ना रखे? नामुमकिन है। यकीन कैसे पैदा हो? बस अगर ये यकीन पैदा हो जाए तो इनके इख्तियार में ये बातें हैं। अहले बैत अतहार इतना इख्तियार रखते हैं कि जिसे चाहे हिदायत जैसे दे दें, उसके बाद कि जिसके बाद फिर कोई शक ना रहे। अच्छा, वो यकीन ही तो था, वो मौला से मोहब्बत ही तो थी, वो मवद्दत की इंतहा और मेराज ही तो थी। क्या आने वाला आया, मौला मैंने चोरी की है, हद जारी करें मौला, मैं चोर आपके सामने खड़ा हुआ एतराफ जुर्म कर रहा हूं, आई एम कन्फेसिंग, मैं कन्फेशन करता हूं, मैं कन्फेस करता हूं कि मैं चोर हूं, या अली मैं आपकी बारगाह में आया, हद जारी करें मौला। इमाम अलैहि सलाम ने पूछा, जानता है चोर की सजा क्या है? कहा मौला मुझे पता है, उंगलियां काटेंगे आप। मशहूर ये है, मारूफ ये हो गया कि चोर की सजा हाथ काटना है, लेकिन पहले उंगलियां काटी जाती है। इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया, हद जारी कर दूं, क्या तू तैयार है? कहा मौला मैं बिल्कुल तैयार हूं। अब जरा ये मौला का इख्तियार भी साथ साथ देखिए, हब बाबा वाले बिया वाली रिवायत में इख्तियार भी साथ साथ देखिए, इस रिवायत के अंदर भी इख्तियार साथ साथ देखिए, तसर्रुफ देखिए इंसान की, इंसान के जिस्म उसकी जिस्मानियत पर, उसके वजूद पर इमाम का क्या इख्तियार है। जवानी पलटा रहे यहां पर मौला क्या करने लगे जरा देखिएगा, आपका शायद सुना हुआ वाकया हो, लेकिन ये ईमान की ताजगी का सबब बनते हैं ये वाकयात, ये रिवायतें। मौला मैं तैयार हूं, हद जारी फरमाए, मैंने चोरी की है, मैं आपकी बारगाह में आया, मुजरिम खुद कह रहा है। मौला ने बुलाया उस शख्स को कि जो हद जारी करने वाला शख्स है, और मौला ने कहा कि ठीक है, जो इसकी हद है वो जारी करो इस पर। उंगलियां काटी गई, कट गई उंगलियां, उन उंगलियों को समेटा एक हाथ में लिया और चला। जब बाहर गया तो लोगों से मिल मिलकर कह रहा है कि ये जानते हो उंगलियां किसने काटी है? मेरे मौला अली ने काटी, मेरी उंगलियां काटी, मेरा सलाम हो सली पर। अरे मौला की फजाइल पढ़ रहा है, उंगली खुद आया कटवाई उंगलियां, मौला ने उंगली जो चोर की जो हद थी वो हद जारी करवा दी, अब वो जब कटी हुई उंगलियां समेट कर अपने हाथों में लेके बाहर गया, मौला की तारीफें, मौला के फजाइल, मौला के मनाकिब पढ़ रहा है। पढ़ने वाला, फजाइल पढ़ने वाला, मौला के फजाइल पढ़ने वाला कोई आबिद और जाहिद नहीं है, कोई बहुत बड़ा नमाजी रोजादार और नमाज गुजार नहीं है, दिनों रात के अंदर हजार रकत नमाज पढ़ने वाला नहीं है, इधर सजदे का निशान नहीं है उसके, चोर है चोर, लेकिन अली के फजाइल पढ़ रहा है। दिल के अंदर मौला की मोहब्बत इस उरूज और कमाल पर है कि जानता है कि हक है तो यही है, और यही मोहब्बत और मवद्दत है जो उसको ठीक रास्ते के ऊपर लेकर आई है। और क्या चीज है इसके पास, मवद्दत ही तो है दिल में अली का, इश्क ही तो है कि खुद चलकर आ रहा है, एहसास हो गया उसको, आ गया और कहता है कि अली हद जारी करे, लेकर गया समेट कर कटी हुई उंगलियां, कहता है कि सलाम हो अली इब्न अबी तालिब पर, सलाम हो अबुल हसन पर, सलाम हो मोमिनों के अमीर पर। मौलाए कायनात के पास एक शख्स आया, कहा या अली अभी कोई ऐसा वाकया हुआ है, कोई आया था आपके पास, आपने उसकी ऊपर हद जारी की और उसकी उंगलियां काटी? कहा हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ। कहा आप जानते हैं क्या हुआ है बार, वो कटी हुई उंगलियां हाथों में लेकर गया है और लोगों के सामने आपके फजाइल पढ़ रहा है। मौला हसन ने मुस्तफा को अपने करीब बुलाया और कहा जाओ अपने चचा को बुलाकर लेकर आओ। क्या कहा मौला ने, बेटा हसन जाइए और अपने चचा को बुलाकर लेकर आइए। बुलाया गया, उसी तरह से वो कटी उंगलियां हाथ में, मौला अबुल हसन अलैहि सलाम, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम। क्या हुआ, हाथ काटने पर कैसे फजाइल पड़ रहा है? तब मौला ये हाथ, ये जो उंगलियां काटना, यही तो फजाइल का रुख है, इसी में तो फजाइल का रुख है मौला। दुश्मन के काटे होते तो मैं कहता कि आपने हद जारी की, आपने तो अदालत में और कानून नाफिज करने में, ताजीरात इस्लामिया को नाफिज करने में दोस्त तक को ना छोड़ा, जो अल्लाह का हुक्म था वो दुश्मन के लिए भी वैसे ही जैसे दोस्त के लिए। आपसे बड़ा तो कौन, कमाल, आपसे बड़ा कौन रहबर और रहनुमा होगा, या अली या अबुल हसन या अमीर अल मोमिनीन। और मौलाना ने कहा अच्छा एक काम कर, जो तेरी उंगलियां कटी हुई हैं, जिस जगह से कटी है ना उसी जगह पर ले जाकर मिला, वहां वहीं पर ले जाकर रख जहां से तेरी उंगलियां कटी हैं। और मौला तशरीफ ले गए, मुसल्ले पर दो रकत नमाज पढ़ी, अभी नमाज खत्म न हुई थी उंगलियां जुड़ गई, जैसे कटी थी जहां से कटी थी वैसे जुड़ गई, पता भी ना चला कि इन्हें कभी काटा भी गया है। पता चल गया, एक कानून मिल गया कि मोमिन को जो सजा मिलेगी वो वक्ती होगी और जो जजा मिलेगी वो हमेशा रहने वाली होगी। कटी थी थोड़ी देर के लिए, जुड़ गई हमेशा के लिए। तो मोमिन को अगर सजा मिलेगी भी तो वक्ती होगी, जजा जो मिलेगी वो हमेशा की होगी, बशर्ते कि अली का जाने वाला हो, बशर्ते कि मोहब्बत अहले बैत रखता हो, मोहब्बत कुर्बा दिल में रखता हो। क्या हुआ, यह है मौला अमीर अलैहिस्सलाम का इख्तियार भी और यही है मौला ए कायनात की मवद्दत का असर भी, कि जो ऐसे उस पर असरअंदाज हुई कि उसे हिदायत दे गई। ये ना कहा करें कि अगर नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत अली की रखी है दिल में तो किसी काम की नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जुमला सही नहीं है अजीजों। अगर यानी हमने जितनी इंपॉर्टेंस नमाज को दी, रोजों को दी, इबादतों को दी, ये सब क्या है, फुरूए दीन, मवद्दत कुर्बा क्या है, उसूल दीन। यानी हम जब स्कूल में और मदरसों में पढ़ते हैं उसूल दीन, यानी दीन की जड़ें पांच हैं, ये हम पढ़ते हैं मदारिस के अंदर। फुरूए दीन यानी दीन की शाखें दस हैं। अब दीन की शाखें दस हैं या इससे ज्यादा हैं, ये उलमा ने अकायद, उलमा ने इल्म कलाम के अंदर इसकी गुफ्तगू की है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं तो बच्चों की लेवल पे बात कर रहा हूं कि हम क्या कहते हैं, उसूल दीन यानी दीन की जड़ें, फुरूए दीन यानी दीन की शाखें। शाखों की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है या जड़ों की? हमने शाखों को जितनी इंपॉर्टेंस दी उतनी इंपॉर्टेंस भी जड़ों को नहीं दी। हालांकि कुल्लास अलुकुम अलेह अजरन इल्ल मवद्दता फिल कुर्बा, नमाज, रोजा, हज, जकात, खुम्स, जिहाद, इन सारी चीजों का अजर क्या है? अब जरा सोचिए, ये सारी चीजें, फुरूए दीन का अजर क्या है? अब जो चीज फुरूए दीन का अजर बनेगी वो यकीनन फुरूए दीन से किस हद तक अफजल होगी वो खुद सोचिए। यही वजह है कि आपको इतने सारे मवद्दत रखने वाले, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले राह रास्त पर आते हुए नजर आएंगे, और दूसरी जानिब बहुत सारे नमाज पढ़ने वाले ऐसे भी नजर आएंगे कि जो ये कह रहे हैं कि हुसैन का गला काटो, जल्दी नमाज असर पढ़ने के लिए जाना है, और ये कौन है, चोर है, मगर दिल में अली की मोहब्बत रखता है, कैसे खुदा ने उसकी कश्ती को पार लगाया। इसको हल्का ना समझे अजीजों। हां यह भी नहीं कहा जा रहा कि मवद्दत पर तकिया करके गुनाह करते चले जाइए, कि भाई हम तो मवद्दत रखने वाले अब हम गुनाह करेंगे, अब देखते हैं हमको कौन नहीं बचा सकता, नहीं ये बात नहीं है, ये तो जरी हो गए, तजर्री की बात आ गई है। तो इंसान जुरअत कर रहा है परवरदिगार आलम की बारगाह के अंदर, ये भी नहीं कहा गया। लेकिन बस अजान मोहतरम बात को खत्म किया, वो क्या कह रहे थे, हुसैन को जल्दी से कत्ल करो कि नमाज असर का वक्त आ रहा है। अल्लाह अकबर। कौन हुसैन? वो हुसैन कि जो दीन इस्लाम की बुनियाद है, कि जो बुनियाद ला इला है, कि जो दीन है वो हुसैन, कि जिसकी इत्तबा करना ऐसा ही है कि जैसे हुक्म खुदा की इत्तबा की। अजीज हुसैन इब्न अली आका अलैहिस्सलाम अपना सब कुछ लुटा चुके हैं करबला में, जो हुसैन के पास था करबला में लुटा दिया, और वो ऐसी बेटी कि जो सुकून देने वाली बेटी थी, ऐसी बेटी कि जिसे हुसैन ने नमाज शब में परवरदिगार से मांगा था। करबला से लुटा हुआ काफिला चला है जानेबे कूफा, और जब ये लुटा हुआ काफिला कूफा की तरफ चला, कितने सारे ऐसे बच्चे थे कि जो पुश्ते नाका से गिर जाते थे और ऊंटों की टापों तले पायमाल हो जाते थे और शहीद हो जाते थे। करबला से कूफा के दरमियान कितने ही ऐसे नौनिहालों की शुहदा की कब्रें हैं कि जो मौजूद है, गिनती हो रही है बच्चों की गिनती पूरी न थी। जनाबे बिनती अली ने सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ ले गए मख्तल की जानिब, बच्चे ना मिल रहे थे, जनाबे सकीना भी मौजूद नहीं है और दो बच्चे और हैं कि जो मौजूद नहीं है, जनाबे ज़ैनब कुबरा चली, देखा दो बच्चे हैं कि जो बाहों में बाहें डाले एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, हरकत नहीं है बच्चों में। बीबी ज़ैनब सोची शायद, जनाबे बिनते अली ने सोचा शायद ये बच्चे सो चुके हैं, आराम कर रहे हैं, इनकी आंख लग गई, थक गए थे। जैसे ही बीबी ने आगे बढ़कर दोनों बच्चों को जुदा किया तो क्या देखा, सीनों पर ऊंटों के टापों के निशान है, दोनों बच्चों के लाशें पामाल हो चुके थे, एक दूसरे से बगलगीर होकर ऐसे दाई अजल को लब्बैक कहा था कि प्यासे इस दुनिया से रुखसत हुए। मगर अजीजो करबला के बन में हुसैन की बेटी सकीना नहीं मिल रही। एक मरतबा सानी जहरा परेशान हुई तो तलाश करते करते जंगलों की तरफ का रुख किया। एक मरतबा जैसे ही नशेब की तरफ गई है ये कहती जाती थी, ऐ न सुकैना, ऐ न सुकैना, बेटा सकीना कहाँ हो, बेटा सकीना कहाँ हो, मेरी बेटी सकीना कहाँ चली गई, ये कहना था। एक मरतबा मौला, एक मरतबा करबला के बन में ये आवाज बुलंद हुई, बीबी आहिस्ता कहो, मेरी बेटी सकीना अभी अभी थक कर मेरे सीने पर सोई है। अरे क्या देखा, बेसर का लाशा, सीना तीरों से भरा हुआ है, पूरा का पूरा बदन जख्मों से चूर है, बच्ची अपने बाबा के सीने पर सर रख कर सोई है। एक रिवायत ये भी बयान करती है कि जैसे ही बीबी बिनते अली ने ढूंढना शुरू किया तो एक खातून के एक मस्तूरा की आवाज आई, कहा बेटा ज़ैनब आहिस्ता, अभी सकीना सोई है गोदी में, बड़ी मुश्किल से इस बच्ची की आंख लगी है, आहिस्ता कहो कहीं ये उठ ना जाए, बेदार ना हो जाए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने उस बीबी को के जो नकाब पोश बीबी है, करबला की रेत पर बैठी है, गोदी में सकीना को सुलाया है, सवाल करती है बिनते अली, पूछती है सानिए ज़हरा, ए बीबी आप कौन है, इसलिए कि कोई इस बच्ची को प्यार करने वाला इस वन में ना मिला, जो मिला इसे तमाचे मारने वाला मिला, जो मिला कोड़े मारने वाला मिला, जो मिला गोशवारों को छीनने वाला मिला, आप कौन है जो प्यार कर रही है। कहा है बेटा अगर मैं प्यार ना करूंगी तो कौन प्यार करेगा। कहा मैंने पहचाना नहीं आप कौन है। बीबी फरमाने लगी, वो ज़ईफा कहने लगी है, मेरी बेटी ज़ैनब तूने मुझे ना पहचाना, अरे मैं ही तेरी माँ ज़हरा, ये मेरी पोती सकीना, करबला के बन में मैं अपनी सकीना को गोद में सुलाने के लिए। الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أول محمد أي منقلب ينقلبون। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह से मकबूल व मंजूर फरमा। बारे इलाहा पैगाम तसलियत पुरसे का पैगाम और यासू ये गिरिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में ईसाल व इरसाल फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जितने भी मोमिनीन और मोमिनात हैं तमाम की मुश्किलात को हल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जितने भी मोमिनीन और मोमिनात हैं सबके दिलों में ईमान के नूर को और रोशन फरमा। हमारे दिलों में, हमारी नस्लों में मवद्दत से अहले बैत अथार का पैगाम जारी और सारी फरमा। जैसा अहले बैत अथार ने चाहा वैसी ज़िंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। इमाम के ज़ुहूर में, हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन।